दिसंबर 1 मुझे परखो, मलाकी 3:10। तुम अपने खेत में प्रतिवर्ष होने वाली सारी उपज की दशमांश जरूर देना, व्यवस्था विवरण 14:22। अनेक विश्वासी हर्ष के साथ और नियमित रूप में परमेश्वर को उनकी दशमांश देने में चूकते रहते हैं। शुरू में जब उनकी आमदनी कम होती है तब वे अपने दशमांश नियमित रूप में देते हैं, लेकिन जब उनकी आमदनी बढ़ जाती है तब उन्हें अपने दशमांश देने में मुश्किल होने लगती है। अनेक विश्वासी अपने दशमांश का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे अपने दशमांश को अपने गरीब संबंधियों को देने में या भिखारियों को देने में या प्रवासी प्रचारकों को दान के रूप में देने में खर्च कर सकते हैं। दशमांश परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के घर के लिए होते हैं। हमारे दशमांश परमेश्वर के घर के लिए देने के द्वारा हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है या हम जो कुछ हैं वह सब परमेश्वर की ओर से है। अब्राहम ने मलिकिसिदक को दशमांश दिया, उत्पत्ति 14:20, और इस तरह उसने परमेश्वर की उस सामर्थ और सहायता को पाने की बात को स्वीकार किया जिससे वह लूत को छुड़ा सका था और राजाओं को हरा सका था। आपके दशमांश परमेश्वर के घर में लाए जाने चाहिए, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। अगर आप अपने गरीब संबंधियों या पड़ोसियों की मदद करना चाहते हैं तो अपनी आमदनी के बाकी बचे हुए हिस्से में से करें। शुरू में मुझे भी ये नहीं मालूम था कि मैं अपना दशमांश कैसे दूं। उस समय मेरे पास कोई धन नहीं था, मेरा प्रशिक्षण बिना किसी अनुदान के ही हो रहा था। अगर कोई मुझे एक मामूली भेंट देता था तो मैं उसे अपने ऊपर खर्च कर लेता था। एक साल से भी ज़्यादा समय तक मैंने कोई दशमांश नहीं दिया। मेरी गरीबी की दशा बनी रही और कई दिनों तक मेरे पास कोई पैसा नहीं होता था। बस का किराया न होने की वजह से मुझे प्रतिदिन कई मील पैदल भी चलना पड़ता था। अगर कोई मुझ पर दया करके मुझे एक मामूली भेंट देता था तो मैं ये सोचकर उसे अपने ऊपर खर्च कर लेता था, ये तो थोड़े से रुपये हैं और ये मेरी अपनी ज़रूरत के लिए ही है। इस समझ के साथ मैं कभी दशमांश नहीं देता था। तब प्रभु ने मुझे यह कहते हुए डांटा कि तू एक लुटेरा है, चाहे वह एक मामूली रकम है फिर भी तू मुझे लूट रहा है। तब मुझे ये विचार आया, अगर मैं 10 रुपये में अपना काम चलाता हूँ तो 9 रुपये में भी चला सकता हूँ, मैं परमेश्वर का 1 रुपया क्यों चुराऊँ। तब मैंने परमेश्वर को दशमांश देने का फैसला दिया और मैंने परमेश्वर को 10 में से 1 हिस्सा, फिर 10 में से 2 हिस्से, फिर आधा, फिर 3/4 और फिर जो कुछ मुझे मिलता था वह सब देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रभु जो मेरा है वह सब तेरा है, मैं तेरी अनुमति के बिना इसमें से 1 पैसे को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन से उसने मुझे भरपूरी से देना शुरू कर दिया और मुझे दूसरों की मदद करने का भी सौभाग्य दिया और वह सब कुछ गुणात्मक रूप में बढ़ता गया। अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि किसी चीज़ के लिए ज़रूरतमंद होना क्या होता है। इन बीते सालों में परमेश्वर के काम की हर एक ज़रूरत के लिए प्रभु भरपूरी से देता रहा है। जब मैंने उसे आनंद के साथ देना सीख लिया तब उसने मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा कर दिया। एक लुटेरे न बन जाएं, परमेश्वर को अपना दशमांश दें, पर वह परमेश्वर का भाग है। कुछ अर्जित करने के लिए जो शक्ति, स्वास्थ्य और बुद्धि उसने आपको दी है उसके लिए उसे धन्यवाद दें और वह आपको जो कुछ भी देता है उससे संतुष्ट रहें। लालची और लोभी ना बने, किसी से भीख न मांगे और न किसी से उधार लें, अपने सास ससुर से भी नहीं। रोमियो 13:8 में परमेश्वर का वचन यही कहता है, किसी मनुष्य के कर्जदार ना हो। आप एक प्रचारक या कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी चाहे जो भी ज़रूरत हो कभी उधार ना मांगे। अगर आप दूसरे लोगों के सामने ये साक्षी देना चाहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है तो उधार ना मांगे। इब्रानियों 13:5-6, अगर आप उधार मांगते हैं तो ये कहें, मेरा ससुर मेरा सहायक है, मेरी सास मेरी सहायक है, मेरे पड़ोसी और मेरे मित्र मेरे सहायक हैं। संतुष्ट करने और किसी से कुछ भी न मांगने से ही आप एक साक्षी बन सकते हैं। किसी मनुष्य से कभी उधार न लें। परमेश्वर के घर में हर्ष के साथ परमेश्वर का हिस्सा ले आएं तो वह आपको भरपूर प्रतिफल और आशीष देगा।